संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर अब भगवान आगे के 21वें श्लोक में देते हैं।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद् योनिजन्मसु।
प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। व्याख्या। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहने का तात्पर्य शरीरस्थ कहना ही है। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहा गया है। वास्तव में पुरुष प्रकृतिस्थ अथवा शरीरस्थ नहीं है। अपने को स्वस्थ न मानने से अर्थात स्व में अपनी स्थिति का अनुभव न करने से ही वह अपने को शरीरस्थ मानता है। वास्तव में पुरुष प्रकृति में यानी शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ अर्थात जब वह शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल यानी दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक को यानी कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष को ही भोगना पड़ता है, अर्थात शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति में अहंता ममता न करे अर्थात शरीर में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में ही स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है, इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद है यानी दोनों का विवेक है, वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति में स्थित यानी शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है, यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है।